कोई काम करते समय काम करते हुए भगवान के गीत गाते हैं, खास करके किसी पर्व त्योहार के अवसर पर जरूर आटा पीसते समय, धान कूटते समय, किसी भी समय भोजन बनाते समय भी भगवान के गीत गाती है। उसके कारण आचार्य जो लिखते हैं कि एक तो स्त्रियों में गाने की रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है, और दूसरे स्वाभाविक उनका स्वर होता है और काम में गाती रहती है। ऐसे मांगलिक अवसरों पर खास करके विवाह उत्सव के समय गाती रहती है मंगल के लिए। तो भगवान के गुणों को गाना चाहिए जब भी फुर्सत हो, न फुर्सत हो काम करते समय भी भगवान का नाम उच्चारण। माला नहीं जप सकते लेकिन मुंह तो खाली है, बोल सकते हैं। और ये प्रसिद्ध युक्ति है कि कोई व्यक्ति बहुत नाराज है नहीं बोलता है, तो हम तो कई बार ऐसा सुने हैं एकदम बिल्कुल नाराज है, राम विष्णु भी नहीं बोला है। और बात बोले या न बोले राम विष्णु तो जरूर बोलना चाहिए, लेकिन हमारे सामने तो वो भी उच्चारण नहीं किया, जो बिल्कुल जरूरी है करना उसको भी नहीं बोला। ऐसा कहते कुछ नहीं बोला, राम विष्णु नहीं बोला। आश्चर्य की बात है कि वो राम विष्णु भी नहीं उसके मुंह से उच्चारित हुआ, इसका मतलब ज्यादा नाराज है। तो जो उच्चारण होना चाहिए वो भी नहीं हो पाया। तो भगवान का नाम जरूर बोलना चाहिए कभी भी किसी भी अवस्था में, इसका अभ्यास होना चाहिए। एक शिक्षा यह भी मिल रहा है मैया के व्यवहार से। तो भगवान आ गए, देख रही है माँ यशोदा की आ गया लाला। तो आते ही गृहित्वा दधि मंथानम, दधि मथने वाली जो मथानी है उसको पकड़ लिए, स्टव क्या कर रही है। एक आचार्य कहते हैं कि प्रतिदिन मुझको गोद में लेकर दुलार करती थी, आज तुम लकड़ी को लेकर क्या कर रही है, इस मथानी को क्या कर रही है, मैं तेरा बेटा हूँ किए है, इससे प्रेम क्यों कर रही है, मेरी माँ है कि मथानी की माँ है, इसको हाथ में लेकर दुला रही है और मुझे अलग बेड पर छोड़ दी मुझे सोते हुए। माँ चुपचाप है, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही, कुछ बोल नहीं रही है। न्यसेधत प्रतिमा बहन, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं मानो मथानी पकड़कर रोक दिए, निषेध कर दिए नहीं मथना है। और ऐसा करके प्रतिमा बहन, प्रतिमा बहन का मतलब प्रेम की पिटारी मानो सिर पर टोकरी में लेकर पटक दिए, वहां प्रेम को लेकर ठोकर ला दिए, प्रेम का पिटारा सिर पर लाकर मानो श्याम सुंदर मैया के सामने रख दिए। प्रेमैव प्रभुरीश्वरः, कहा गया है कि प्रभु भगवान का स्वरूप प्रेम ही है, ईश्वर का स्वरूप प्रेम है। और मानो माँ के सामने ऐसा व्यवहार किए, एकदम अधिकार पूर्वक आकर मथानी रोक दिए, नहीं मथने दूंगा बंद। और मैया चुपचाप खड़ी हो गई, मथानी चलने नहीं दे रहे, बांह से पकड़ लिए हाथ से। और इसके बाद सीधे उस मटके के ऊपर जिसमें 25-30 लीटर दही था, उसके ऊपर मटके पर एक पैर रखे और मैया के साड़ी को कंचुकी को पकड़े और फिर कमर पर पैर रखकर गला को पकड़कर चढ़ गए गोद में। हाथ से कुछ पकड़ नहीं रहे, एकदम रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तमंग कमारूढ़ मपाय तस्तनम, जब चढ़ गए तो चढ़ करके कंचुकी के अंदर से स्तन को निकाले और मुंह में स्नेह स्नुतम सस्मित मिक्षति मुखम, मुख में पकड़ लिए। और मैया जब देख ली कि एकदम स्तन पीना चाहता है तो अब तो स्नेह में पागल माँ यशोदा विभोर हो गई और बैठ गई, छोड़कर दही मथना और बैठकर अपने लाला को पिलाने लगी। वो दूध तो पहले से ही चुचुआ रहा था, मानो वो सोच रहा था आज हो क्या गया है, आज तो मैया दही मथने लगी और जगते ही कन्हैया के जगते ही ताजा माखन देगी। तो स्तन में पड़ा पड़ा दूध जो चिन्मय था वो सोचने लगा हमारा प्रयोग क्या होगा, हमारा यूज क्या होगा। तो मानो भगवान के स्वागत के लिए कंचुकी से बाहर निकल रहा था जिसको देख लिए श्री कृष्ण, और उसके स्नेह को नहीं सह पाए, पीने लगे। स्वाभाविक पीते थे, अब तो दूध चुचुआ रहा था पहले से ही, और लगी पिलाने और मुस्कुराते हुए अपने लाला के मुख को बीच बीच में चूम लेती थी। सस्मित इच्छितम इच्छति मुखम, अपने हंसते हुए मुस्कुराते हुए लाला के मुख को देखती थी और बीच बीच में चूम लेती थी। और वो हंस हंस कर अपने मैया के तरफ देखकर उनके स्नेह को बढ़ाते जा रहे थे और स्तन पी रहे थे, तब तक अभी स्तन पिला रही है तब तक एक घटना हो गया, बहुत जबरदस्त घटना घट गई। क्या भोर में दुही हुई उसी पद्मगंधा गाय का दूध जो स्पेशल कृष्ण बलराम के लिए रखा जाता था, आपकी अंगीठी पर रखा हुआ था, सुबह का दुहा हुआ दूध सामने, मैया जहाँ दही मथ रही थी उसी के सामने, तब तक अब दूध सोचने लगा। अप्राकृत जगत में, वैकुंठ में, गोलोक में सब कुछ चिन्मय है, चाहे वो पेड़ के आकार में हो, चाहे नदी के आकार में, चाहे दूध के आकार में, चाहे पक्षी के आकार में, चाहे गाय के, सभी चिन्मय, कोई वहां जड़मय वस्तु है ही नहीं, सभी पत्थर पेड़ सब लोग सब चिन्मय है। जैसे आप लोग देखे होंगे बच्चों के मिष्ठान बनाया जाता है, कभी कभी चीनी का घोड़ा बना देते हैं, हाथी बना देते हैं, या पक्षी बना देते हैं, मछली बना देते हैं चीनी का, उसका अलग अलग रंग लगा देते हैं, आकृति बना देते हैं कई तरह के, और बच्चे भी जानते हैं कि इसका टांग तोड़कर खाएंगे तो भी मीठा लगेगा, कान तोड़कर खाएंगे भी तब भी मीठा लगेगा। एक ही वस्तु का बना ही है चीनी, दूसरा कुछ नहीं है, हाथी चीनी है, लेकिन आकृति अलग अलग है, मछली का है, कभी हाथी का है, कभी घोड़ा का, कभी किसी भी आकार में। उसी प्रकार अप्राकृत जगत में आकृति चाहे कुछ भी हो, लेकिन सब सचित आनंद का बना हुआ है, वहां कोई हार मांस मज्जा रक्त का बना पदार्थ नहीं, जड़ीय अंश नहीं, जडांश नहीं है अप्राकृत जगत में, सब चिन्मय है, केवल ज्ञानमय, आनंदमय और सत्य सचिदानंदमय है। तो वहां के प्रत्येक वस्तु को सोचने की क्षमता है। तो दूध सोचने लगा कि बाप रे, जिसके लिए, जिसकी सेवा के लिए मैंने तपस्या करके ब्रज में घास बना और गायों के पेट रूप फैक्ट्री में जाकर दूध बना श्याम सुंदर की सेवा के लिए, और आज मैया का यह अथाह स्तन का दूध जो पिला रही है, आज तो श्याम सुंदर ऐसे पी रहे हैं कि हमारा कोई कीमत ही नहीं। वो कलयुगी माँ की तरह तो दूध कम होने वाला था नहीं, पीते जा रहे हैं, पीते जा रहे हैं, और दूध निकल रहा है, अपार दूध है माँ के स्तन में। तो अब जब तृप्त हो जाएंगे दूध पीकर तो फिर हमारा क्या वैल्यू है। अब ये सोचकर वो दूध सोचा कि जो जीवन भगवान के सेवा में नहीं लगा उसका रहना व्यर्थ है, इनकी आंखों के सामने ही आत्महत्या कर लेना चाहिए। तो उस आग दूध में उफान आया, बहुत तेज उफान, और आग में गिरने के लिए तब तक मैया की दृष्टि पड़ गई। तो अस्तन पीते हुए एकदम आनंद में विभोर लाला को अपना उसके मुख से अस्तन को छुड़ा करके जमीन पर रख दी और दूध बचाने के लिए चली गई, सामने रख दी, नीचे रख दी जमीन पर, गोद में से नीचे रख दी और दूध बचाने के लिए गई। जब ही खड़ी हुई तब ही दूध शांत हो गया, मानो लज्जित हो गया कि मैया के इस वात्सल्य सुख में मैं अवरोधक बना, संकोच के मारे बैठ गया नीचे। फिर भी माँ यशोदा जब खड़ी वहीं गई तो उस दूध को आग से उठा करके दूसरे घर में रखने के लिए चली गई। तब तक देखिए जो अस्तन काम है, अब अतृप्त मुझसे जवेन साया उत्सिच माने पैसी पधिश्रिते, पूर्ण काम अस्तन काम हो गए और जो पूर्ण तृप्त है वो अतृप्त हो गए। अभी उनको तृप्ति नहीं हुई मैया के अस्तन पीने से, तो अतृप्त मुत्सृज्य जवेन साया, इस प्रकार वो मैया अतृप्त कन्हैया को जमीन पर रखकर दूध बचाने के लिए चली गई। तब तक इधर कन्हैया को संजात कोप क्रोध उत्पन्न हो गया, शुद्ध सत्व स्वरूप सचिदानंद श्री विग्रह श्री भगवान में तमोगुण का कोई लेश नहीं है, इस सत्व रजतम में प्राकृत दोष है, प्रकृति के गुण है सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, और तमोगुण की वृत्ति क्रोध है, भगवान में क्रोध नहीं है, न भगवान में कोई टेंशन है, इसीलिए मुस्कुराते रहते हैं। बड़े बड़े लोग चिंतित रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, और भगवान आनंद में रहते हैं हमेशा। तो उनको क्रोध हो गया, संजात कोप क्रोध हो गए मैया यशोदा पर कि देखो जिसके घर में हजारों क्विंटल दूध होता है, कितना दूध है, वह आज थोड़ी सी दूध बचाने के लिए चली गई, मुझको स्तन नहीं पिलाई, गिर ही जाता तो क्या हो जाता, इसके घर दूध की क्या कमी है, अथवा मेरा कीमत इस दूध से भी कम है, मुझको पीते हुए स्तन से हटा दी, गोलोक छोड़कर आया ब्रज में आनंद पूर्वक मैया के गोद में खेलने के लिए और यहाँ इस तरह से व्यवहार कर रही है। भगवान की जन्म लीला और ये बाल लीला है मधुर, जो माँ के स्नेह सौहार्द आदि सब कुछ है गोलोक में, लेकिन जन्म लीला नहीं है। जन्म के साथ भगवान हमेशा वहाँ एक जैसा ही रहते हैं, इसके लिए तो उनको यहाँ आना पड़ता है, भक्तों को माँ पिता स्वीकार करना पड़ता है, वहाँ तो अजन्मा है, नित्य नवजौवन है। तो माँ के गोद में इस तरह से आनंद विहार करने के लिए आया और ये देखो इस तरह व्यवहार कर रही है। भगवान को क्रोध आ गया, क्रोध के कारण इस सारे प्राकृत दोषों को भगवान अपने लीला में सहयोगी बना करके आनंद ले रहे हैं, सब सार्थक हो रहे हैं, काम भी सार्थक हो गया और क्रोध भी सार्थक हो गया। क्रोध आया और अपने ओठों को दांतों से दबाते हुए संजात कोप स्फुलता रुणाधरम संदस्य दधि दधिमंथ भाजनम भित्वा मिश्राश्रु और मिश्राश्रु दस्मना रहो जघा सह इवंग मंतरम गतः। तो भगवान को जब क्रोध आया तो इधर उधर देखने लगे, अपने दांतों से ओठ को दबाते हुए क्रोध में भर कर देख रहे हैं कि कुछ तो करना पड़ेगा, क्रोध आया तो ये रिजल्ट तो देगा ही। तो अब देखने लगे इधर उधर तो एक मिल गया शिला पुत्र, पत्थर का टुकड़ा, देहात में हम लोग उसको सील बट्टी या लोढ़ा, सील लोढ़ा कहते हैं, उस छोटा सा जो मसाला पीसने का, तो वही लोढ़ा मिल गया जिसको सिद्धा स्वामी शिला पुत्र कहते हैं, पत्थर का टुकड़ा। तो पत्थर का टुकड़ा मिल गया तो अब जो मटका था दही का, उसको बड़ी बुद्धिमता के साथ ऐसे उठाए बाएं हाथ से और पेंदी में मार दिए। एक टीकाकार कहते हैं कि इसके कई कारण थे, एक था कि अगर मैया आकर तत्काल कहे कैसे फूट गया तो कह देंगे पता नहीं तुम मत रही थी, मथानी लगकर पेंदी में फूट गया, ऊपर फूटता तो मथानी का बहाना नहीं कर सकते, मथानी से ही लगकर फूट गया होगा, एक तो यह कह सकते हैं, अथवा ऊपर मारने पर आवाज आएगा तो मैया बगल में ही है तुरंत दौड़ कर आ जाएगी, पेंदी में मारूंगा तो थोड़ा सा ढंग से आवाज करेगा, दही भाग जिधर है तो ज्यादा आवाज नहीं करेगा। तो इस बुद्धिमानी के साथ फोड़ दिए, फोड़ने के बाद वो दही फैल गया फर्श पर, उनके पैरों में भी लग गया। अब तो सोचे कि मैया अगर तुरंत आएगी तो पकड़ कर दो चार तमाचा तो लगा ही देगी, तो भागे, तो भागे दूसरे घर में भागे, लेकिन उनके दही जो पैर था उसका छाप पड़ गया, फुटप्रिंट लगा, पता चल रहा था किधर से गया है। और अब मिश्राशु आंखों में मिथ्या आंसू बहाते हुए एकांत में जाकर जहाँ पुराना बासी माखन रखा हुआ था उस घर में गए और वहां जाकर माखन खाने लगे और सीटी देकर बंदरों को बुला लिए, आवाज दिए और बंदर भी आ गए उनके पास। उतार जो गोपी सुनतम पया पुनः अब माँ जसोदा दूध को रख करके पुनः आई दही मंथन जगह पर जहाँ दही मथ रही थी। तो प्रवेश संदस्य चध्य मद्रकम भगनम विलोक्य सुत कर्म तक जहाज तम चापी न तत्र पश्यति, आकर देखती है तो वहां कन्हैया नहीं है। तो मैया को हंसी आ गई, कहां चला गया, उसका पैर तो छाप तो दिख रहा था, समझने में भी देर नहीं लगी कि मेरे लाला का ही काम है, लेकिन मैया को हंसी क्यों आ गई। चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि माँ के अंदर क्रोध आया ही नहीं, अपने लाला पर हंसी आ गई और एक खुशी भी हुई कि हमारे लाला का बल और बुद्धि दोनों बढ़ रहा है, देखो ऊपर नहीं फोड़ा है, बड़ी चनाके से पेंदी में फोड़ा है, इसका मतलब बुद्धि है, और 30 किलो दही को उठाया है बाएं हाथ से, इसका मतलब बल भी बढ़ रहा है। तो बल और बुद्धि के बढ़ने से माँ में प्रसन्नता है। इतना बड़ा घटना कर दिया, देखो कितना निर्भय है, लेकिन भय है। आगे तो क्रोध में किया होगा, लेकिन भयभीत होकर भाग गया। तो उनको देखने के लिए जब नहीं देखी, न तत्र पश्यति, जब वहां नहीं देखी, तब मैया उनके चरण चिन्ह का अनुकरण करते हुए आगे बढ़कर देखती है। तो उखल प्रचार कर उलु खलेंगरी रूपरे व्यवस्थितम मरकाय कामम दत्त शिचिष्ठितम हैवं गमं चौर विशंकिते क्षणम निरीक्ष पश्चात सुतमा गमक्षणै। देखती है पीछे दूर से, तो उखल के ऊपर चढ़कर ऊपर छीके पर रखे हुए मटकों को उतारकर बंदरों को खिला रहा है। उलु खलांग्रे रूपरी व्यवस्थितम चढ़कर, और मरकाय कामम बंदरों के लिए काम भर जथेच्छा, जितनी इच्छा उतना खिलाए, खूब जमकर खिला गए हैं। हैवं गमम चौर विशंकितेक्षणम, और चोरी करते समय मटका ऊपर से गिराते समय बड़ी सशंकित दृष्टि से देख रहे हैं। मैया आ तो नहीं रही है, पता तो है चोर के दाढ़ी में तिनका, भय तो बना हुआ है कि मैया आएगी। निरीक्ष पश्चात सुतमा गमच्छनि, और धीरे धीरे मैया पैर दबाते हुए आ गई, हाथ में छड़ी दी है। देख लिए कि छड़ी लेकर आ रही है, इसका मतलब पकड़ते ही पीटेगी। तो तमातयष्टिम प्रसमीक्ष सत्वरम ततो वरुह्य पससार भीतवत। भीतर भय नहीं है, जिनसे काल भी भयभीत होता है उनको किस बात का भय, लेकिन भयभीत जैसे उस उखल से कूदे और बड़ी तेजी से भागने लगे, और उनके पीछे माँ जसोदा दौड़ने लगी। गोप्यन धावन न जमाप जोगिनाम क्षमम प्रवेशतुम तपसे रितम मनः। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि तपस्या के द्वारा जिनका मन परम पवित्र है, ऐसे शुद्ध सत्व में रहने वाले जोगी लोग जिस भगवान को समाधि में पकड़ नहीं पाते, उनको डायरेक्ट पकड़ने के लिए और दो चार छड़ी जमाने के लिए माँ जसोदा दौड़ रही है। देखिए अद्भुत लीला है। और एक गोप्यन धावन ने यमाप जोगिनाम क्षमम प्रवेश तुम तपसे रितम मना। तप से जो पवित्र किया गया मन है जोगियों का, वो अभी भगवान को नहीं पकड़ पाता है। कभी कभी भगवान के रूप लीला का स्मरण होता है, कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है, नहीं हो पाता। अथवा वही बड़े बड़े जोगी लोग, तपस्वी लोग भगवान के स्वरूप को पकड़ पाते हैं, उनको माँ जसोदा अपने हाथों से पकड़ कर पीटना चाहती है, इसके लिए दौड़ रही है। अनमंच माना जननी बृहत चला, और भगवान बड़ी चंचलता के साथ भाग रहे हैं। बहुत तेज नहीं भागे, कभी 4 इंच, कभी 6 इंच, कभी 12 इंच के दूरी पर ही भाग रहे थे। लग रहा था अब पकड़ लेगी, और ऐसे घुमा रहे थे, कभी बाएं कभी दाएं, कभी सीधे कभी आगे कभी पीछे। और मैया का बृहद शरीर और मंच माना जननी बृहद चला शौरी भरा क्रांत गति सुमध्यमा। मैया का नितंब और ऊपरी भाग स्तन आदि भारी था, और कमर पतला था। कहते हैं सुमध्यमा, बड़ा सुंदर कमर था, लेकिन थका दिया कन्हैया, इतना तेज दौड़ाया कि जवेन विशंसित केश बंधना, ऊपर से केवल फूल गिर रहे थे, पूरा केश का जूड़ा ही खुल गया। और च्युता प्रसूनानुगति परामिशत, और मैया दौड़ नहीं पा रही थी, गति अब कम हो गया, लेकिन भगवान तेज नहीं भाग रहे हैं, उसके गति के अनुसार ही भाग रहे हैं, उससे थोड़ा सा आगे चल रहे हैं, उनको दौड़ा रहे हैं, और थका दिए, एकदम पसीना से लथपथ हो गई। किस महीना में? गर्मी मई जून में नहीं, कार्तिक के महीना में, दीपावली के दिन, जाड़े के दिन में सुबह सुबह ही पसीना निकलने लगा, इतना दौड़ा दिए। थक गई मैया, लेकिन दौड़ना छोड़ नहीं रही है, पकड़ना चाहती है। तो देख लिए भगवान की मैया मानेगी नहीं, दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्णम, आगे वर्णन है। कृष्ण देख लिए कि मैया पसीना से लथपथ हो गई, बहुत परिश्रम कर ली, तो पकड़ में आ गए। तो कहां कैसे पकड़ी, पीछे से दौड़कर गर्दन पकड़ दी, भगवान जानबूझकर पकड़ में आ गए, परामिशत पीछे से पकड़ ली। तो जेम ही पकड़ती है तेम ही इतना जोर रोने लगे किता गसंतम प्रदंतम अक्षणी कसंतम मंजनमशनी सुपाणिना उद्विक्षमानम भयद्विहवले क्षणम हस्ते गृहीत्वा विषय तवागुरत। बहुत भयंकर रोने लगे। जब रोने लगे तो कहने कहती है और छड़ी हाथ में दी है, चिल्लाते हुए मैया मारो मत, मैं अब ऐसा नहीं गलती करूंगा, कान पकड़ता हूँ मैया मारो मत। माँ कहती है अच्छा तुम्हें जब डर है तो क्यों इस तरह की गलती किया, क्यों मटका फोड़ा? एक ही मटका नहीं सैकड़ों मटका फोड़ दिया है पुराना बासी का माखन गिराकर। चक्रवर्ती ठाकुर और लोग लिखते हैं कि मानो भगवान बासी माखन खाते हुए यह शो करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत भूखा हूँ, तुम मुझको नहीं तृप्त कर पाई, दूध नहीं पिलाई है और तुम दूध बचाने के लिए चली गई कंजूसनी, मैं बासी माखन खाऊंगा और मुझे रोग होगा, फिर मथुरा हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा तब पता चलेगा, तब तुमको पता चलेगा कि कितना कंजूसी का फायदा है। थोड़ा दूध बचाने गई ना, मुझको इतना भूख लगा है कि मैं 20-25 दिन का बासी माखन खाऊंगा और पेट में रोग होगा तब तुमको पता चलेगा। मानो इस मूड में भगवान माखन गिरा रहे खा रहे। तो अब पकड़ ली, पकड़ने के बाद लगे रोने, बहुत जोर घिघिया कर रोने लगे। दामोदराष्टक में सुने हैं रुदंतम मुहुर् नेत्र जुग्म मृदंतम कराम भोज जुग्मे न सातंक नेत्रम मुहु श्वास कंपत रेखांक कंठ स्थित गई दामोदरम भक्ति बद्धम। जब जेब ही पकड़ी तो दोनों हाथ को दोनों आंखों से आंखों को दोनों हाथों से मलते हुए रुदंतम मुहुर् नेत्र जुग्म मृदंतम कराम भोज जुग्मे न सातंक नेत्रम दोनों हाथ से दोनों आंखों को मल रहे हैं और आतंकित होकर देख रहे हैं कि पीछे से दो चार छड़ी पीठ पर जमा न दे। सातंक नेत्रम आतंकित नेत्र से देख रहे हैं। तो भय उद्विक्षमारम भय विवले क्षणम भय से विवल होकर देख रहे हैं मैया के तरफ और मैया छड़ी अब मारूंगी मारूंगी खूब डरा रही है। मरकट बंदर बंधो खूब डांट रही है। अशांत प्रकृति मथनी स्फोटक ये संबोधन कर रही है। बानर बंधो अब तुझे माखन कहाँ से मिलेगा, आज मैं तुमको बांध कर रखूंगी, दिन भर कुछ खाने को नहीं दूंगी और न तुम अपने साथियों के साथ खेल पाओगे, इस तरह डांट रही है। तुम ग्वाल बालों के साथ खेलेगा नहीं, माखन चोरी और उद्धम जो मचा रखा है ब्रज में आज तुमको दिन भर बांध कर रखूंगी पशु की तरह। चल डांट रही है अरे मैया मुझको मारो मत, बार बार कह रहे भगवान। माता ने कहा यदि तुझे पीटने का इतना भय था तो इतना भारी गलती क्यों किया, क्यों ऐसा किया, क्यों मटका फोड़ा? कृष्ण कहते मैया अब कभी जीवन में इस तरह की गलती नहीं करूंगा, मैं तेरी कसम खाता हूँ नहीं करूंगा मैया। बार बार इस तरह से कर रहे हैं, तुम अपने हाथ से छड़ी फेंक दे, बार बार प्रार्थना करते हैं लेकिन हस्ते गृहीत्वा विषयम् तवा गुरत उनको गुड़गुड़ा रही है, डरा रही है और इसके लिए छड़ी अभी नहीं फेंक रही है। लेकिन इतना तेज रोने लगे कि मैया को छड़ी फेंकना ही पड़ा, फेंक करके भी वो शांत नहीं करा पा रही है। कभी कभी किसी बच्चे को क्रोध में दौड़िए कुछ धमकाने के लिए डांटने के लिए अगर रोने लगे तो क्या मारेंगे, वो खुद एक नया समस्या खड़ा हो जाता है कि इसको चुपवाना कैसे। और जोर से रोने लगे तो अब चुप रहो अब शांत रहो नहीं मारूंगा बेटा ये कहना पड़ेगा। तो ठीक यही हालत हो गया, भगवान रोने लगे छड़ी फेंक दी और छड़ी फेंक करके लगी चुपवाने बेटा शांत हो जाओ नहीं मारूंगी। अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मैया अर्भक वत्सला थी, त्यक्त्वा यस्तिम सुतम भीतम विज्ञाया अर्भक वत्सला येष किल तम बद्धुम दामना तदवीर्धि को विदा। मैया भगवान के महिमा को तो नहीं जानती थी कि भगवान है, लेकिन अर्भक वत्सला मैया, अर्भक का मतलब होता है सामान्य बालक, किसी के बच्चे को अर्भक कह देंगे, तो किसी भी बच्चों से प्रेम करने वाली मैया थी और वो तो अपना लाला था। तो जब किसी बच्चों से प्रेम कर रही है तो अपने बच्चे को क्यों मारेगी, छड़ी फेंक दी। त्यक्त्वा यस्तिम सुतम भीतम भीतम सुतम अपने डरे हुए बेटे को देखकर मैया हाथ से छड़ी फेंक दी और फिर चुप कराने लगी। जब शांत हो गए रोना बंद कर लिए तो कहेंगे छोड़ूंगी नहीं, तुमको बांध कर रखूंगी, तुमको बांधूंगी यही सामने। चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि क्रोध नहीं था बंधन का कारण, बांधने के कारण क्रोध नहीं था, इसलिए मैया नहीं बांध रही थी कि बहुत गलती कर दिया है तो इसको दंडित कर दे। उसके मन में अपार स्नेह समुद्र में ज्वार भरता उठ रहा था कि मेरा लाला आज बहुत डर गया है, अगर छोड़ दूंगी तो ये डर के मारे भाग जाएगा और वन में चला जाएगा, दिन भर नहीं आएगा तो मेरा लाला कुछ खा नहीं पाएगा, अभी स्नान भी नहीं किया है, अपने आंखों के सामने रखूंगी, कहीं नहीं जाने दूंगी, इसको बांध कर रखूंगी और जो भी काम धंधा इधर उधर अस्त व्यस्त कर दिया है तो इसका भोजन तैयार करके तो फिर अपने लाला को मना लूंगी और फिर खिलाऊंगी प्रेम से। इस स्नेह अधिक के कारण मैया उनको बांधना चाहती है और इसके पीछे गौर कारण यह है कि मेरा लाला है, इसमें भी स्नेह। चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं दूसरा फेज है स्नेह का कि मैं इसकी जननी हूँ, मेरा दायित्व तो है अपने बच्चे को सुधारना, अगर मैं इसको समय पर दंडित नहीं करूँ नहीं सुधारूं तो इसका आदत बिगड़ते जाएगा, गांव वाले दूसरे स्त्रियां तो हंसी उड़ाएगी कि देख मैया जसोदा, देख तेरा लाला चोर है बदमाश है, वो तो हंसेंगी। सुधारना तो मेरा काम है, मेरा काम है, लाला मेरा है, इसीलिए भगवान की चिंता होती है कि लोग मुझको अपना बेटा माने, अपना के बण माने, अमार समहीन यही भावे भाई अमी तहार अधीन, इस भाव के मैं अधीन रहता हूँ, अपने को बड़ा मानकर मुझको छोड़। माता मोरे पुत्र भावे करे न बंधन, अति हीन ज्ञान करे लालन पालन, हीन ज्ञान से लालन पालन करती है, बेटा दूध पी ले, ये पौष्टिक दूध है पद्मगंधा गाय का, तुम इसको पियोगे तो शरीर में बल बढ़ेगा, ऐसा कहती है माँ जसोदा। नहीं पीते हैं, बहुत नखरा करते हैं, कहते हैं जानते हो श्रीदाम क्यों तुमसे मजबूत है, सुगर में क्यों बल है, क्योंकि वो उसकी मैया दूध पिलाती है, तो दूध पियोगे तो तुम लोग कुश्ती में पटक दोगे, सबसे बड़ा बलवान हो जाओगे। अच्छा मैया, दूध में इतना ताकत है तो पीते हैं, और दूध पीते पीते कभी मैया की चोटी को देख कर कहते मैया तेरी चोटी यहाँ कमर तक है, मेरा तो बहुत छोटा है, तो कहते बेटा दूध पियोगे तो चोटी बढ़ जाएगी, तो दूध पीते हैं, दो चार घोट पीने के बाद छूटते नहीं बड़ा मैया, तो कहते अरे इतना जल्दी नहीं, रोज पियोगे तब बढ़ेगा, तो इतना फुसला फुसला कर पिलाती है और भगवान बड़ा स्नेह से पीते हैं। तो वो मैया आज सोच रही है कि मेरा बेटा अगर भाग जाएगा तो दिन भर बिना खाए रह जाएगा, एक कारण। दूसरा कारण कि अगर मैं इसको अभी नहीं सुधारूं तो इसका आदत बिगड़ते जाएगा और बाद में बहुत बड़ा गलती करके भी उठा दिखा देगा कि तू उस दिन तो मुझे बहुत सता रही थी ना, क्या कर ली, पकड़ में भी नहीं आया, तो इस तरह कुछ कर देगा, तो इसको सुधारना है। चक्रवर्ती ठाकुर तो यहाँ तक लिखते हैं कि छोटे छोटे चोरी का आदत बनता जाएगा तो बाद में बहुत बड़ा डकैती अपहरण दूसरे की स्त्रियों को भी चुराने लगेगा, इसलिए इसको अभी सुधारना है, एकदम टाइम पर दंड देना है, इसलिए पकड़ करके बांधने लगी और बांधने की जेब बात की और धमकी दे कि तुमको दिन भर नहीं खेलने दूंगी और नहीं कुछ खाने को दूंगी। तो भगवान सत्संकल्प भगवान के मन में आया कि बाप रे, गोलोक छोड़कर आया ब्रज में आनंद विहार के लिए और ये इतना सताएगी, बिना खाए रखेगी, मैं ब्रज के माखन मिश्री मलाई दूध रबड़ी खाने के लिए आया और ये मुझको बिना खाए रखेगी, क्या मैं व्रत करने के लिए गोलोक से आया हूँ, आनंद लेने के लिए आया। तो सत्संकल्प भगवान ज्यों ही ऐसा सोचने लगे तेव ही उनकी ऐश्वर्य शक्ति मैया के सामने चुनौती के लिए खड़ा हो गया, हो गई उनकी ऐश्वर्य शक्ति खड़ी हो गई और कहने लगी अच्छा तो तू बकरी की बच्चा समझती है कि बांध देगी, बांध कर दिखा। और मैया रस्सी निकाली और उखल में लपेट करके कन्हैया के कमर में बांधना चाहिए, दो आंगुल कम हो गया। मैया समझ नहीं है रही है कृष्ण के तत्व को, न चांतर न बहिर्जस्य न पूर्वम न पिचापरम पूर्वापरम बहिशांत जगतो यो जगस्य, जिनका न बाहर है न भीतर है, न पूर्व है न पश्चिम है, सब कुछ उनके अंदर है, सारा विश्व ब्रह्मांड जिनके रोम रोम में निवास करता है उनको भगवान कहते हैं, विराट पुरुष। कितना बड़ा रस्सी लाकर बांधेगी, अब वो रस्सी लगाई, रस्सी घट गया, घटने लगा, आगे वर्णन आएगा। तो तम मत्वा आत्मजम व्यक्तम अव्यक्तम मत लिंगम अधोक्षजम, उस भगवान को न जिनको बाहर है न भीतर है, जब दुर्योधन में एक बात बांधने की चुनौती किया था, जब संधि दूत बनकर गए, तो उस समय दुर्योधन को तो इतना भारी चुनौती दिए कि वो बांध नहीं पाया, क्योंकि भगवान वास्तव में विराट पुरुष है, सब कुछ उनके अंदर ही है, सारा पर्वत पहाड़ नदी समुद्र आकाश तारे सब उनके शरीर के अंदर, कितना बड़ा रस्सी कोई लाएगा। खंड काव्य है, छोटा सा काव्य रामधारी सिंह दिनकर लिखे हैं, हिंदी में है, उत्तर भारत में इंटर कॉलेज के हिंदी साहित्य में चलता है, तो उसको पढ़ते हैं कोर्स में, रश्मि रथी, जिसमें कर्ण का वर्णन है, तो उसमें लिखते हैं दिनकर जी की भगवान चुनौती करते हुए दुर्योधन को कहते हैं, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, पहले बांध अनंत गगन आकाश को बांध, इतना बड़ा रस्सी लाया है, इतना बड़ा रस्सी लाया है जो मुझे बांधने आया है, मूर्ख कहीं का, जो नाश मनुष्य पर छाती है पहले विवेक मर जाती है, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही है, तुम मुझको बांध लेगा, तुम मेरे विषय में जानते ही नहीं हो, अनंत विष्णु अनंत जिष्णु ये सब मेरे रोम कुंप में रहते हैं, और मैं पर मेरी स्थिति क्या है, जब मैं देखता हूँ इस जगत के तरफ तो जगत खुशहाल रहता है, पड़ जाती है दृष्टि इधर हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब ही मुंदता हूँ लोचन छा जाता है महाप्रलय। मूर्ख कहीं का, मेरे विषय में कुछ ज्ञान रखता है, मुझे बांधने आया है, नहीं बंधे वहां। और यहाँ मैया जसोदा तम मत्वा आत्मजम अव्यक्तम, अव्यक्त को अपना बेटा मान रही है, मर्तलिंगम अधोक्षजम अधोक्षज को मर्तलिंग मनुष्य का बच्चा मान रही है, और गोपिको लुखले दामना बबंधव प्राकृतम जथा, वास्तव में मैया उनको प्राकृत बकरी के बच्चे जैसा बांध दी, एक प्राकृत पशु की तरह बांध दी प्रेम में। अब इसको आगे और वर्णन करते, तद दाम बध मानस्य स्वार्भकस्य कृतागस द्वय अंगुलों भूते न संदब्धे अन्यस्य गोपिका, मैया जसोदा बांधना चाहती है दो अंगुल कम, गोपियों से कहती है रस्सी लाओ, तो कोई 10 मीटर कोई 20 मीटर रस्सी लेकर आती है और जोड़कर एक राउंड में ही दो अंगुल कम, न तीन न चार न कम ज्यादा नहीं, दो अंगुल कम हो रहा है। यदासी तदपि न्यूनम देनान्यदपि संदधे तदपि दो अंगुलम न्यूनम यद यदा दत्वंदनम, तो फिर दूसरा रसी भी आकर जोड़ी तो वो भी दो अंगुल कम हो गया। एवं स्वगेह दामानी जसोदा संदध्यपि गोपीनाम सुस्मति सुस्मयंती नाम यस्मयंतिम विस्मिता भवत, गोपियां हंस रही हैं, अरे मैया क्या चक्कर में पड़ी हो, ये लाला बंधेगा नहीं, इसके कर्म में बंधन नहीं है, माँ डांटती है क्यों नहीं बंधन है, इसके कमर में पहले से ही करधनी है, वो तो बंधन ही है ना, ये जंगिया पहनता है वो बंधन ही है, आज क्यों नहीं बंधेगा, कहता अच्छा तो बांधो, थक गई बांध बांध कर, सुबह से प्रयास करते करते दो पहर बीत गया, और गोपियां दौड़ दौड़ कर रस्सी हजारों मीटर रस्सी आ गया, न रस्सी घट रहा है न कमर बढ़ रहा है, मुट्ठी भर कमर में दो एक राउंड पूरा नहीं हो रहा है, देखकर आश्चर्य हो गया। स्व मातु सीन गात्राया विश्वस्त कवर सज, अपने माँ के शरीर में पसीना देखकर और कमर जो सिर का बंधन तो पहले से खुल गया है, विश्वस्त कवर सज वो तो पहले से खुला हुआ है, और दृष्टवा परिश्रम कृष्ण, कृष्ण देख लिए परिश्रम, कृपया शीर्ष बंधने, कृपा पूर्वक मैया के परिश्रम को देखकर भगवान बंध गए। यहाँ एक टीकाकार लिखते हैं कि दो अंगुल की कमी का कई कारण है, बहुत से कारण है, मैं समय अभाव में तो नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन एक बतला रहा हूं जिसका वर्णन है, कि मैया के परिश्रम की सीमा और कृष्ण के कृपा का सीमा यही सीमा पर नहीं पहुंच रहा था, यही दो कमी थी। जिस सीमा पर परिश्रम होना चाहिए कृष्ण प्राप्ति के लिए, उस सीमा पर भक्त को परिश्रम करना चाहिए, अभी उस परिश्रम में कमी हो रहा था। देख लिए भगवान की परिश्रम पूरा हो गया, दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण, कृष्ण देख लिए कि हाँ ये एकदम बेजोड़ परिश्रम कर रहा है। तो कृष्ण की कृपा जो है अभी जिस लेवल पर आना चाहिए उस लेवल पर नहीं पहुंच रहा था, तो वो भी पहुंच गया। दोनों जब एक साथ जुटा तो कृपया शीर्षो बंधन, कृपा पूर्वक अपने बंधन में आ गए, भगवान बन गए। तो यहाँ एक और विशेष शिक्षा मिलता है कि भगवान परिश्रम देखते हैं, दृष्टवा परिश्रम कृष्ण का भगवान परिश्रम देखकर तब कृपा किए, निथले और आलसी पर कृपा नहीं करेंगे, परिश्रम देखते हैं कि वास्तव में मुझे प्राप्त करना चाहता है कि बस सोने खाने में ही टाइम बिता रहा है, इसकी लालसा मुझको प्राप्त करने की कितनी है, इस बात को भगवान जानना चाहते हैं, देखते हैं, तब उनकी कृपा होती है। कृपया शिष्य बंधन है, भगवान अपने कृपा शक्ति से बंध गए अपने बंधन में, अपने मतलब अपने माँ के बंधन में, अपने माँ के वात्सल्य बंधन में भगवान बंध गए। तो अब देखिए सुखदेव गोस्वामी अब कथा कहते हुए कमेंट्री दे रहे हैं, दो तीन श्लोक में, तीन श्लोक में सुखदेव गोस्वामी की कमेंट्री है कथा पर, 19-20-21। एवं संदर्शिता यंग हरिणा भृत्य वश्यता स्वशे नापि कृष्णे न जस्येदम शेश्वरम बसे। हे मेरे प्रिय, हे अंग, अंग संबोधन करते हैं, अंग माने अभिन्न, गुरु शिष्य में कोई खास अंतर नहीं होता, गुरु का ही अंग स्वरूप शिष्य होता है, जैसे बाप का पुत्र आत्मा व जायते पुत्र, बाप ही पत्नी से पुत्र के रूप में जन्म लेता है, इसलिए पत्नी को जाया कहते हैं, पति को जन्म देने वाली जाया, जाया माने माँ होता है, लेकिन पत्नी को जाया क्यों कहते हैं, क्योंकि पति को ही पुत्र रूप में जन्म देती है। तो पुत्र और पिता में खास संबंध है, और वह संबंध एक अंग का है, अपना ही अंग है, अपना ही अंश है। उसी प्रकार शिष्य और गुरु का भी संबंध होता है, सैद्धांतिक सिद्धांत के अनुपालन के लिए शिष्य गुरु का समर्पण करता है, और ऐसे समर्पित शिष्य को अंग कहते हैं, स्निग्ध शिष्य कहते हैं। तो ऐसे स्निग्ध शिष्य के प्रति इस संबोधन कर रहे, मेरे प्रिय अंग, मेरे अभिन्न परीक्षित, संदर्शिता एवं संदर्शिता, एवं माने ऊपर जितनी कथाएं कही गई सबको एक बार विचार कर लीजिए, एवं इस प्रकार संदर्शिता सम्यक रूप से दिखाने के लिए, क्या दिखाने के लिए, हरिणा हरि के द्वारा वृत्त वश्यता, मैं अपने भक्त के अधीन हूँ इसको दिखाने के लिए, सौ बसे नापी कृष्णे न जस्येदम शेश्वरम बसे, जिसके अधीन सारा विश्व ब्रह्मांड है, शिव ब्रह्मा जम कुबेर इंद्र सूर्य चंद्रमा आदि जिनके इशारे पर चलते हैं, एक सेकंड भी इधर उधर नहीं होगा, टाइम से सूर्योदय होगा, टाइम से सूर्यास्त होगा, सबके नाकों तक ऑक्सीजन सप्लाई करना है तो पवन देव ठीक ढंग से करेंगे, ऐसा नहीं कि किसी को करेंगे किसी को नहीं, एकदम ठीक से। भगवान कपिल देव माता देवती को प्रवचन करते करते बोलने लगे, माता जानती हो मत भयात बाती बात हो यम सूर्यस्तपति मत भयात, मेरे भय से हवा बहता है, मेरे भय से सूर्य प्रकाश देता है, मेरे भय से अग्नि धहकती है, मेरे भय से इंद्र वर्षा करता है, मतलब भगवान के कंट्रोल में है। तो जो सो बसे नापि कृष्ण न जैसेदम से स्वरम बसे, सारे ईश्वर जिनके बस में है, वह भगवान अपने भक्त के बस में है, उनके अधीन होकर बंध गए। और क्या दिखाए कि आत्मा राम होकर भी स्तन काम हो गए, मैया का स्तन पीने के लिए मचल पड़े, जिनको कोई कामना नहीं उनको कामना हो गई, और जो अतृप्त है उनको लोभ हो गया, अतृप्त को लोभ हो गया, और जो विशुद्ध सत्व में रहते हैं उनको क्रोध हो गया, और ठीक से नहीं सेवा करने पर क्रोध हो गया, देखिए, और काल को भी भयभीत करने वाले को भय हो गया, भयभीत होकर भाग रहा है, और जो पकड़ में आ गए तो बंधन में स्वीकार कर लिए, बंध गए साधारण बकरी के बच्चे की तरह बंध गए। तो एवं संदर्शिता, यह व्यवहार, यह लीला करके भगवान ने दिखा दिया कि मैं अपने भक्तों को बस लू। माता कुंती अपने स्तुति में एक श्लोक में कहती हैं कि जो मैया जसोदा के, गोपी जसोदा के छड़ी से आप रो रहे थे वो ड्रामा नहीं था, सचमुच रो रहे थे। और जो काल को भी भयभीत करने वाले आप कि इस लीला पर जब मैं विचार करती हूँ तो मुझे आश्चर्य हो जाता है, मोह में पड़ जाती हूँ। गोप्या तदे तो कृता गसीदा मतावत याते दशास कलिनान जन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य सामं विमोहयति भी रपिजत विभेति। वह लीला आज भी मुझको मोह में डाल देती है जब मैं इस पर विचार करती हूँ। काल को भी भयभीत करने वाले जिनके पास जमराज थर थर कांपता है वही गोपी जसोदा के छड़ी से कांप रहे थे। चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि कुंती महारानी सुन कर लीला नहीं बोल रही है, देख कर बोल रही है। उस समय नंद भवन में उपस्थित थी कुंती, क्योंकि वसुदेव और नंद में बड़ा गहरा संबंध था मित्रता का, तो जैसे वसुदेव भैया है वैसे नंद भी भैया थे। तो नंद भवन में कुंती उपस्थित है इसलिए देख कर कह रही, सुनी हुई कथा नहीं कह रही है। कहते गोप्या ददे तो कृता गसी दाम तावत, जिस समय आप गोपी जसोदा के द्वारा अपराध की कृत अपराध हुआ था आपके द्वारा, उसका मटका फोड़ दिए थे उस समय याते दशासु कलिलांजन संभ्रमाक्षम, उस दशा पर मैं जब विचार करती हूँ तो आंख से गिरता हुआ आंसू आपके काजल को लेकर गालों पर बह रहा था, और वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य और कांपते हुए बार बार आप माँ जसोदा की तरफ देख रहे थे, सामं विमोहयति भीरपि यत् विभेति, मुझको वह लीला मोह में डाल देती है। क्यों? कि भीरपि यत् विभेति, काल को भी भय को भी जो भयभीत करने वाला है वही मैया जसोदा के छड़ी से रो रहा था। तो इस तरह भगवान के अंदर यह देखा गया, स्तन काम, क्रोध, भय और बंधन सब एक हुआ। तयोम संदर्शिता हिंगा हरिणा भृत वश्यता, अपने भक्त के मैं अधीन हूँ यह दिखाने के लिए। और यह जो सुख गोपी जसोदा को प्राप्त हुआ वो न इमम विरिंचो न भवो न श्री अप्य अंग संशया प्रसादम ले भीरे गोपी यत्तत् प्राप्युक्तिदा, ऐसा सुख, ऐसा सौभाग्य, ऐसा बात आत्मीयता का व्यवहार न ब्रह्मा को प्राप्त हुआ, न शिव को प्राप्त हुआ, न वक्षस्थल पर निवास करने वाली लक्ष्मी को प्राप्त हुआ। ये तो केवल जसोदा के भाग में है और किसी के भाग में नहीं। ऐसा सबसे बड़े बड़े व्यक्ति का नाम रखते हैं, न विरिंचो न भव न श्री अपि अंग संशया, अंग संशया वक्षस्थल पर आने वाली लक्ष्मी को नहीं हुआ। अथवा चक्रवर्ती ठाकुर न ले भीरे तीनों को एक साथ कह रहे हैं, ब्रह्मा को नहीं प्राप्त हुआ, नहीं प्राप्त हुआ, नहीं प्राप्त हुआ, शिव को नहीं प्राप्त हुआ, नहीं प्राप्त हुआ, नहीं प्राप्त हुआ, लक्ष्मी को नहीं प्राप्त हुआ, नहीं प्राप्त हुआ, नहीं प्राप्त हुआ, ये तो केवल गोपी जसोदा को ही प्राप्त हुआ, ऐसा कह रहे हैं। कहने का मतलब यह नहीं कि शिव जी, ब्रह्मा और लक्ष्मी कम है, एक टॉप मोस्ट भगवान के प्रिय भक्त है, लेकिन उनको भी यह सौभाग्य नहीं मिला। क्या लक्ष्मी उनको बांध देगी या तमाचा लगा देगी, उनका है हिम्मत, या शिव जी लगा देंगे? नहीं, ये तो केवल वात्सल्यमयी साक्षात वात्सल्य मूर्ति मैया जसोदा ही ऐसा कर सकती है, कभी भी कान पकड़ सकती है, कभी भी तमाचा लगा सकती है, कभी भी डांटने लगती है। तो ये माँ जसोदा नायम सुखा को भगवान देही नाम गोपिका सुत ज्ञान नाम चात्म भूता नाम यथा भक्ति मतामी है। मानो भगवान सारे विश्व के ज्ञानियों को, ध्यानियों को चैलेंज कर रहे हैं कि ज्ञान नाम चात आत्म भूता नाम, अपने स्वरूप में चिंतन, ब्रह्म चिंतन करने वाले या ज्ञानी लोग जो निर्विशेष निराकार का तत्वबोध करते हैं, उनको एक सुख नहीं मिल सकता। जथा भक्ति मता निह, जैसे मैं भक्ति के अधीन हूँ वैसा मैं किसी साधन के अधीन नहीं हूँ, न ज्ञान के अधीन हूँ न योग के अधीन हूँ। इस तरह भगवान अपने स्वरूप को दिखा दिए कि मैं अपने भक्तों के लिए जितना सुलभ हूँ। यहाँ भक्तों का विजय हुआ है, इसलिए सुखदेव गोस्वामी तीन तीन श्लोक में गा रहे हैं एकदम चैलेंज के साथ कि जितना हमारा पक्ष मजबूत है उतना दूसरा पक्ष नहीं, इसलिए तीन श्लोक में कमेंट दे रहे हैं। ऐसा सौभाग्य और किसी को नहीं। यह गोपिका नंदन भगवान कृष्ण अनन्य प्रेमी भक्तों को जितना आसानी से सुलभ है, वैसे देहाभिमानी कर्मकांडियों को नहीं, तपस्वियों को नहीं, स्वरूप भूत ज्ञानियों के लिए नहीं है, किसी के लिए नहीं है। जितना भक्ति से भगवान सुलभ होते हैं, तो इस प्रकार भगवान तो बन गए हैं। माँ यशोदा उनको बाल करके उखल में गृह के कार्यों में लग गई, जो इधर उधर मटका फोड़ा है, भोजन तैयार करना है। तो कृष्णस्तु गृह कृतेषु व्यग्राया मातरी प्रभु, तो भगवान देख लिए कि माँ घर के कामों में लग गई, मुझको तो बांध दी। तब भगवान बंधे बंधे सोचने लगे, अब तो गलती हो ही गया है तो कुछ पूर्ण करना चाहिए। अपराध करने पर प्रायश्चित करना जरूरी है ना, पाप हो जाए, अपराध हो जाए, गलती हो जाए, तभी तो बंधन टूटेगा, कुछ तो कम होना चाहिए। तो अद्राक्षित अर्जुन पूर्वम गोहे कहो धन आत्मदेव, तो उसी आंगन में खड़े कुबेर जी के दो पुत्र वृक्ष जोनी को प्राप्त हुए हैं, तब कुछ पूर्ण कमाना चाहिए, परोपकार करने से पाप अपराध खत्म हो जाता है। तो चलो अब कुछ उपकार करते हैं। ये बेचारे पूर्व जीवन में देवर्षि नारद से पूरा नारद सापे न विश्यताम प्राप्त मदात नल कुबर मणिग्रीव आवित्युख्यात श्रियान्वित। ये लोग नल कुबर मणिग्रीव कुबेर जी के पुत्र हैं, देवर्षि नारद से श्राप प्राप्त करके बेचारे वृक्ष बनकर यहाँ पड़े हुए हैं। चलो उनका उपकार करते हैं, कुछ उनकी सहायता करते हैं, मतलब वृक्ष जोनी से उनको मुक्त करते हैं। जब ये उपकार करेंगे तो उस उपकार के से एक परोपकार आए, पुण्याय पापाय परपिंडनम। अगर कुछ पुण्य कमाना है तो सबसे बेस्ट पुण्य क्या है, उपकार करना। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपिंडनम। अठारहो पुराण में धर्म का सबसे सुंदर परिभाषा है, धर्म एक ही चीज में निवास करता है, उपकार में। परोपकाराय पुण्याय, पुण्य अगर अर्जन करना है तो पुण्य कहते हैं परोपकार को, और पाप कहते हैं परपिंडनम, दूसरे को दुख देने में, दूसरे को सताने को पाप कहते हैं, और दूसरे की सहायता को पुण्य कहते हैं। तो चलो पुण्य करने बेचारे नारद के श्राप से वृक्ष बने हैं, तो इनका उद्धार करते हैं, तो हो सकता है कि इस पुण्य के प्रताप से मेरा भी बंधन खुल जाए। और हुआ यही, उनका जब उद्धार हुआ, पेड़ गिर गया, तब सब लोग जुटे, नंद बाबा भी आ गए और खोल दिए, तो पुण्य कर लेने पर उनका भी बंधन खुल गया। तो इस तरह पूरा नारद सापेन वृक्षतम प्राप्त मदा, मद में मतवाले थे, धनी बाप के बेटे थे, शराब पी लिए थे, अब शराबों के साथ गंगा में दुर्व्यवहार कर रहे थे। देवर्षि नारद के सामने नंग धड़ंग खड़ा हो गए, देवर्षि नारद इनकी दुर्दशा पर श्राप दे दिए, इसलिए वृक्ष जोनी प्राप्त कर लिए। लेकिन देवर्षि नारद की कितनी बड़ी कृपा हुई, इसका विशद वर्णन है आगे के, यहाँ पर यह अध्याय पूरा होता है। नारद जी जैसे महाभागवत भक्त शिरोमणि और करुणा के समुद्र, बिल्कुल शांत शुद्ध सत्व में रहने वाले, देवर्षि के अंदर क्रोध, और ये नल कुबर मणिग्रीव कुबेर के पुत्र हैं, इनमें भी क्या दुर्व्यवहार आया जिसके कारण देवर्षि नारद में क्रोध आ गया है। एक जेन्युइन क्वेश्चन है, जहाँ से दसवां अध्याय प्रारंभ होता है। कथ्यताम भगवान ने तत्तयो पाप शापस्य कारणम एतद् विगृहीतम कर्म जैन वा देवर्षेष्ठम। कहते हैं कि हे भगवान, कृपा करके इसको कहिए साप का कारण क्या हो गया। दोनों आश्चर्य का विषय है कि इतने बड़े भक्त कुबेर के बेटों में एक कौन सा दोष आ गया जिसके कारण देवर्षि नारद जैसा करुणा मूर्ति में क्रोध आ गया, इसको हम सुनना चाहते हैं। तो इस प्रश्न के साथ कल हम प्रारंभ करेंगे। कि क्यों देवर्षि नारद उन पर क्रोधित हो गए और नल कुंवर मणिग्रीव का कौन सा ऐसा उत्पटांग व्यवहार हुआ जिससे देवर्षि नारद में क्रोध आ गया। और यह प्रसंग अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज तो कथा भूमिका की रही, मुख्य हाईलाइट यही है कि देवर्षि नारद कितना स्नेहवान है, नल कुंवर मणिग्रीव पर कृपा किए और बिना योग्यता के कृपा किए। यह है भक्तों की विचित्र करुणा स्वरूप। और भगवान उस कृपा के वशीभूत होकर सोच रहे हैं कि मेरा भक्त नारद श्राप दिया है, इसलिए उनका उद्धार करना है। तो महत कृपा अनुगामी भगवत कृपा, महत कृपा का फॉलो भगवत कृपा करती है, ऐसे नहीं। या महत कृपा सिर्फ भगवत कृपा, महत कृपा के आश्रय में भगवान की कृपा चलती है। तो इसको हम कल परसों दो दिन में सुनेंगे। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद।
Before you can see